भैरवी योगेश्वरी, उषा की राग रश्मियां गंगा के मृदुल तरंगों पर विकीर्ण हो रही है। सारा आकाश उद्भासित हो रहा है। दक्षिणेश्वर मंदिर के शिखर पर मधुर प्रकाश की छटा फैली हुई है। मां भवतारिणी की प्रातः पूजा शुरू होने में अधिक विलंब नहीं है। मंदिर के तरुण पुजारी गदाधर प्रातः कृत्य से निवृत्त होकर हाथ में फूलदानी लिए गंगा तट पर बगीचे में फूल चुन रहे हैं। मन ही मन राम प्रसादी गीत गुनगुनाते हुए वे सोच रहे हैं, अपने हाथों से सुंदर फूलमाला गुथेंगे और मां भवतारिणी के गले में पहनाएंगे, उनके चरणों पर पुष्पांजलि चढ़ाएंगे। भावमग्न गदाधर की नजर अचानक निकटस्थ मौलश्री घाट की ओर गई। देखा, घाट पर एक नाव लग रही है और उस पर एक गैरिक वसना परम सुंदरी भैरवी खड़ी है। भैरवी के लंबे काले केस कलाप खुले फैले हैं। उसके एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में गेरुआ रंग की झोली। गदाधर एकटक भैरवी को देखने लगे। यह सुंदर मुख, सिर पर बिखरे बाल, ये बड़ी बड़ी उज्ज्वल आंखें, यह सब तो स्पष्टतः जाना पहचाना लगता है। काली मंदिर में ध्यानावस्था में उन्होंने यह रूप देखा था। मां भवतारिणी ने उन्हें बतला दिया था कि यह तंत्र सिद्धा महासाधिका भैरवी आ रही है। फूलडाली हाथ में ली गदाधर जल्दी जल्दी अपने कमरे में चले आए और अपने भांजे से कहा, हृदु, तुम तुरंत मौलश्री घाट पर चले जाओ। देखोगे वहां एक परम सुंदरी भैरवी घाट की सीढ़ी पर खड़ी है। उन्हें तुम मेरे घर बुला लाओ। हृदय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने मामा का सहचर है, सेवक है, बराबर साथ रहने वाला है। वह देखता आया है कि उसके मामा त्याग तितिक्षा और ब्रह्मचर्य व्रत लेकर अटूट निष्ठा से भक्ति साधना में लगी हैं। उन्हें कभी भी स्त्रियों की ओर आकर्षित होते नहीं देखा था। वे आज अचानक क्यों इस सन्यासिनी से मिलने के लिए इतने व्यग्र हो गए हैं? वे स्वयं कह रहे हैं, यह सन्यासिनी बड़ी सुंदर है। हृदय ने थोड़ा ऐतराज करते हुए कहा, मेरी तो उस सन्यासिनी से कोई जान पहचान नहीं है, वह क्यों मेरे बुलाने पर यहां आएगी? अरे देरी क्यों कर रहे हो? तुम वहां जाकर यही कहना कि उन्हें मैं बुला रहा हूं, उनसे मिलना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। हृदय समझता था कि साधना के उच्च अवस्था में रहने के कारण मामा का माथा कुछ खराब हो गया है, एक बग्गा हो गए हैं और कोई संकल्प ठान लेते हैं तो उससे उन्हें डिगाना संभव नहीं होता। ऐसी हालत में उनसे बहस करना बेकार है। यह सब सोच विचार कर हृदय मौलश्री घाट पर गया। देखा, वहां भैरवी आसन फैलाकर बैठी है। उसने कहा, मेरे मामा इस मंदिर के पुजारी हैं, वे आपसे मिलने के लिए बड़े बेचैन हैं। बिना किसी दुविधा संकोच के भैरवी बोली, तब चलो चलो, मैं उनसे भेंट करूंगी। इतना कहकर वे त्रिशूल और झोली उठाकर चल पड़ी। हृदय उन्हें राह दिखाता चल रहा था। वह विस्मय विमूढ़ भाव शून्य मन स्थिति में था। ठाकुर के कमरे में प्रवेश कर उन्हें देखते ही भैरवी आनंदाभिभूत होकर हर्षातिरेक से उनकी आंखों में आंसू आ गए। भाव गदगद कंठ से कहने लगी, बाबा तुम यहां बैठे हो, तुम गंगा तट पर रहते हो, यह जानकर मैं तुम्हें ढूंढने निकली थी। मां, तुम्हें कैसे मेरी जानकारी मिली? ठाकुर ने अत्यंत उत्सुक होकर पूछा। मां जगदम्बा ने मुझे आदेश दिया कि मैं तीन साधकों से मिलूं और उन्हें साधना में सहायता दूं। उनमें से दो साधकों से तो मैं पूर्व बंगाल में मिल चुकी हूं और आज गंगा तट पर तीसरे व्यक्ति तुमसे भेंट हुई है। जगदम्बा के आदेश से तुम आई हो तो स्थिर होकर यहां बैठो और मेरी बातें सुनो। तत्पश्चात जैसे सरलचित बालक अपनी मां से आनंद पूर्वक मन की बात कहता है, वैसे ही ठाकुर रामकृष्ण भैरवी को अपने साधन भजन की बातें तथा दैहिक मानसिक प्रतिक्रियाएं और समस्याएं विस्तार पूर्वक बतलाने लगे। भैरवी भी धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनने लगी। कभी तो वे उत्साह से दीप्त हो जाती और कभी करुणार्द होकर अश्रु सजल हो जाती। ठाकुर कहते गए कि शुद्ध भक्ति के साधना पथ पर उन्होंने कैसे कृच्छ साधना किया है। रागानुगा भक्ति से अनुप्राणित होकर मां श्यामा के साथ कैसे कैसे आचार आचरण किए हैं, कैसे जगजननी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिया है। उन्होंने यह भी बतलाया कि कुछ वर्ष पूर्व उन्हें कैसे दिव्योन्माद हुआ, जिस पर लोग बाग कहते थे कि वायु रोग हुआ है। उस अवस्था के कट जाने के बाद उन्हें मां का दिव्य दर्शन हुआ, अनेक प्रकार की रूपरस पूर्ण अनुभूतियां हुई और अभी इन दिनों वे अद्भुत दिव्य भाव ज्वर में बहते जा रहे हैं। कोई कोई कहता है यह सब पागलपन के लक्षण हैं और कुछ लोग इन्हें योग साधना का विकार बतलाते हैं। गंगा प्रसाद नामक एक प्रसिद्ध कविराज हैं। उन्होंने बहुत तरह की दवाएं खिलाई है लेकिन उन दवाओं से कोई लाभ नहीं हो रहा है। सारी बातें विस्तार पूर्वक कहने के बाद ठाकुर ने पूछा, मां तुम बतलाओ यह सब क्या है, क्या मैं सचमुच पागल हो गया हूं। मां जगदम्बा को पुकारते पुकारते मुझे यह कैसा रोग हो गया है। ठाकुर की बातें सुनकर भैरवी आह्लाद गदगद हो गई। ठाकुर को आश्वस्त करते हुए बोली, बाबा तुम्हें कौन पागल कहता है, तुम्हारे मन प्राण में महाभाव का उदय हुआ है। यह सब सात्विक प्रेम विकार है। साधारण लोग या साधारण साधक भी इस परम आध्यात्मिक ऐश्वर्य को भला किस प्रकार समझ सकते हैं। मैं तुमसे ठीक ठीक कहती हूं कि कृष्ण प्रेम में राधा रानी की यही दशा हुई थी। श्री चैतन्य महाप्रभु में भी ये सब लक्षण प्रकट हुए थे। भक्ति शास्त्र में इन बातों का विस्तृत विवरण आया है। मेरी झोली में अनेक शास्त्र ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़कर तुम्हें सुनाऊंगी और समझा दूंगी कि जीवन में ईश्वर प्रेम का ज्वार आने पर कैसे इस तरह की दशा हो जाती है। जहां ठाकुर और भैरवी की बातें हो रही थी वहां एक किनारे हृदय राम भी बैठा था और बड़े मनोयोग से दोनों की बातें सुन रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके मामा क्या सचमुच साधना पथ पर इतना आगे बढ़ गए हैं। बातचीत में काफी समय निकल गया था। भैरवी ने जाकर गंगा में स्नान किया, मंदिर में जाकर देवी का दर्शन कर ठाकुर के कमरे में लौट आई। इस बीच ठाकुर ने भैरवी के भोजन के लिए मां भवतारिणी काली की प्रसादी का फल फूल माखन मिश्री आदि मंगवा लिया था, किंतु भैरवी तो रामकृष्ण के प्रति मात्र भाव से भावित थी। संतान को खिलाए बिना मां भला पहले कैसे खा सकती थी, इसलिए ठाकुर को ही पहले आहार ग्रहण करना पड़ा और भैरवी ने बाद में भोजन किया। भैरवी ने अपने गले में गेरुआ रंग की एक छोटी झोली लटका रखी थी। उस झोली में उनके इष्ट देव रघुवर की नारायण शिला थी। नारायण को भोग चढ़ाने के लिए उन्हें भोजन तैयार करना था। ठाकुर ने मंदिर के भंडार से चावल दाल आटा आदि भोजन की आवश्यक वस्तुएं मंगवा दी और भैरवी ने पंचवटी में जाकर भोग तैयार किया। तदुपरांत इष्ट देव नारायण शिला को पूजा आसन के सम्मुख स्थापित कर उन्होंने भोग चढ़ाया और आसन पर ध्यानस्थ बैठ गई। आंखों से प्रेमाश्रु झड़ने लगे और शीघ्र ही उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। उस समय ठाकुर रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे थे। अचानक उन्हें बोध हुआ कि कोई अनिवार्य आकर्षण उन्हें पंचवटी की ओर खींच रहा है। वे अविलंब वहां जा पहुंचे और दिव्य भाव के प्रबल ज्वार में उनका बाह्य ज्ञान तिरोहित हो गया। उसी अवस्था में किसी आंतरिक दिव्य शक्ति से प्रेरित होकर वे रघुवीर शिला को निवेदित भोग पत्र के निकट बैठ गए और उसी भावाविष्ट दशा में पात्र से भोगान्न लेकर खाने लगे। इतने में भैरवी की आंखें खुली। सामने यह कैसा आश्चर्यजनक अविश्वसनीय दृश्य है, वे चकित स्तंभित रह गई। ध्यानावस्था में उन्होंने देखा था कि उनके ईष्ट देव रघुवीर स्वयं सामने बैठे भोग ग्रहण कर रहे हैं। प्रत्यक्ष दृश्य देखकर उनका शरीर कंटकित हो गया, आंखें अश्रुसिक्त हो गई। यह कैसा रहस्य है? जिस भंगिमा में बैठकर रामकृष्ण भोगान्न खा रहे थे, उसी भंगिमा में भैरवी ने ध्यान में अपने ईष्ट देव को बैठे भोजन करते देखा था। बाह्य ज्ञान लौटने पर रामकृष्ण अपने कृत्य को देखकर घोर लज्जित हुए। उनकी ग्लानि की कोई सीमा न रही। बड़े पश्चाताप और भय से कहने लगे, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे बेसंभाल हो गया और यह कांड कर बैठा। किंतु इधर आनंदातिरेक से भैरवी मां का मुखमंडल उद्भासित हो रहा था, आंखें हर्षोज्ज्वल थी। मां जिस तरह अपने बच्चे को आश्वस्त करती है, वैसे ही वे कहने लगी, तुमने जो कुछ किया है ठीक ही किया है। मैं स्पष्ट रूप से समझ रही हूं कि यह काम तुम्हारा किया नहीं है, बल्कि उनका किया है जो तुम्हारे भीतर जागृत हो गए हैं। मैं यह भी जान गई हूं कि किसने यह भोगान्न ग्रहण किया है और क्यों किया है। ठाकुर अस्त व्यस्त भाव से बोले,
तभी तो मां मैं बाह्य ज्ञान शून्य होकर ऐसा काम कर बैठा।
बाबा, मैं तो कह रही हूं कि तुमने जो कुछ किया है सब ठीक ठीक किया है। मैं समझ गई हूं कि मुझे अब पहले की तरह आनुष्ठानिक पूजा और भोग निवेदन नहीं करना है। मेरी इतने दिनों की पूजा सार्थक हो गई है। भैरवी मां को दृढ़ विश्वास हो गया कि उनके इष्ट देव रघुवीर जी दक्षिणेश्वर मंदिर के इस काली पुजारी में जागृत हो गए हैं। वे इतना भाव विहल अवस्था में थी कि ठाकुर का छोड़ा हुआ जूठा अन्न उन्होंने श्रद्धापूर्वक खा लिया। दिव्य आनंद में विभोर होकर उन्होंने चीरकाल से आराधित और सेवित इष्ट देव के पवित्र शिलाखंड को गंगा में विसर्जित कर दिया। इस घटना के बाद भैरवी ठाकुर को संतान रूपी इष्ट देव के भाव से समझने लगी। उन्होंने ठाकुर के आध्यात्मिक जीवन को पूर्णांग बनाकर उन्हें स्वस्थान में सुप्रतिष्ठित करने का संकल्प मन में ठान लिया। ईश्वर प्रेरित भैरवी ने ध्यानावस्था में अपने मानस पटल पर काली मंदिर के 24 वर्षीय पुजारी गदाधर यानी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का, जो प्रारंभिक नाम था, के भावी स्वरूप को स्पष्ट देखा था। इसलिए वे ममतामयी मां की तरह गदाधर की रक्षा करने लगी। उनकी समस्त आध्यात्मिक अनुभूतियों और शास्त्र ज्ञान का प्रकाश गदाधर के जीवन पथ पर पड़ने लगा। सर्वप्रथम भैरवी ने ही अपने आध्यात्मिक पुत्र गदाधर के भावी जीवन की संभावनाओं की घोषणा की और तब से ही महासाधक श्री रामकृष्ण का युगाचार्य लोक गुरु के रूप में लोगों को परिचय मिलने लगा। देवी जगदम्बा के आदेश पर अचानक ही दक्षिणेश्वर मंदिर के प्रांगण में भैरवी का आगमन हुआ था और उन्होंने अपूर्व निष्ठा, असीम स्नेह और मातृवात्सल से रामकृष्ण का संरक्षण किया। उन्हें अभय मंत्र और संजीवनी शक्ति दी। वे 6 वर्षों तक रामकृष्ण की रक्षिका और मार्गदर्शिका के रूप में उनके साथ रही और देवी के आदेश पर ही रहस्यमय ढंग से एक दिन चली भी गई। कहां गई क्या मालूम। मानव सभ्यता के इतिहास में जब तक ठाकुर श्री रामकृष्ण का नाम चमकता रहेगा, तब तक उनकी अध्यात्म जननी महासाधिका भैरवी भी अविस्मरणीय रहेगी। भैरवी योगीश्वरी उत्तर बंगाल के यसोहर इलाके के एक संभ्रांत तंत्र सिद्ध ब्राह्मण की कन्या थी। उनका जन्म अनुमानतः सन 1822 ईस्वी में हुआ था। उनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार बचपन में जग गए थे और युवावस्था आते आते त्याग वैराग्य और मुमुक्षा की भावनाएं इतनी तीव्र हो गई कि वे एक दिन घर संसार का निरापद आश्रय छोड़कर सदगुरु की खोज में निकल पड़ी। अनेक तीर्थों और सिद्ध पीठों का परिभ्रमण किया। उन दिनों तीर्थ यात्रा में बड़ी कठिनाई थी। रास्ते दुर्गम और विपद संकुल थे। एक लावण्यमय युवती साधिका के लिए तो अकेले राह चलना
और भी कठिन था, किंतु भगवत कृपा और अपने साहबल से वे सभी संकटों को पार कर दी गई। अंततः वे काशी धाम पहुंची और एक सिद्ध कौल साधक से तंत्र दीक्षा ली। गुरु के निर्देश में कठिन साधना द्वारा तंत्र के विभिन्न स्तरों को पार करते हुए वे पूर्णाभिषिक्त भैरवी बनी। तंत्र सिद्धि के साथ साथ तंत्र शास्त्र का सम्यक ज्ञान भी उन्होंने अर्जित किया, किंतु इन सब उपलब्धियों से उनका मन भरा नहीं, इसलिए रागात्मिका वैष्णवी साधना के पथ पर चलने लगी। इस मधुर रस की भाव साधना में भी उन्होंने अनन्य मनोयोग और निष्ठा द्वारा पूर्णता प्राप्त कर ली। तत्पश्चात गुरु के आदेश पर अपने इष्ट देव रघुवीर शिला को कंठ प्रदेश में धारण कर वे पुनः तीर्थ परिक्रमण के लिए निकल पड़ी। विभिन्न प्रकार की साधना सिद्धियों और उच्चतर अनुभूतियों के माध्यम से भैरवी योगेश्वरी संस्कार बंधन से मुक्त होकर चैतन्यमय सिद्धि के स्तर पर प्रतिष्ठित हो चुकी थी। संभवतः इसी कारण वे ठाकुर रामकृष्ण की तंत्र साधना की ईस्ट निर्धारित गुरु बनी और जगदम्बा के आदेश से ही दक्षिणेश्वर के देवी मंदिर में अकस्मात आविर्भूत हुई थी। योगेश्वरी देवी के पिता और माता का परिचय अज्ञात है। यह भी ज्ञात नहीं कि उनका विवाह हुआ था या नहीं, वे सधवा थी या विधवा। किसी भी सूत्र से पता नहीं चलता कि वह किस स्थिति में मुक्ति संधान पथ पर निकल पड़ी थी, उनके गुरु कौन महापुरुष थे, उनकी साधना पद्धति क्या थी और वे किस तरह साधना के विभिन्न स्तरों का अतिक्रमण करती गई। ये सारी बातें विस्मृत के अंधकार में विलीन है। वे दक्षिणेश्वर अंचल में वर्षों रही और पुत्र प्रतिम परम प्रिय शिष्य गदाधर का असीम मात्र स्नेह से आध्यात्मिक संवर्धन किया, किंतु इतने महत्वपूर्ण घनिष्ठ संबंध के रहते हुए भी उन्होंने कभी गदाधर से अपने पूर्व जीवन की कोई चर्चा की हो इसका भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ठाकुर रामकृष्ण ने इन बातों को लेकर कभी कोई जिज्ञासा नहीं की, कौतूहल नहीं दिखलाया। दक्षिणेश्वर मंदिर का पुरोहित नियुक्त होने के लिए ठाकुर रामकृष्ण को शक्ति दीक्षा लेनी पड़ी थी, क्योंकि पुरोहित कर्म करने के लिए देह शुद्धि आवश्यक थी और श्यामा पूजा की शास्त्रोक्त विधि भी उन्हें सीख लेनी थी। उस प्रारंभिक दीक्षा का केवल इतना ही प्रयोजन और महत्व था। वह दीक्षा दी थी कीनाराम भट्टाचार्य नामक तंत्र साधक ने। कीनाराम द्वारा दी गई दीक्षा लोकाचार मात्र थी। तरुण पुरोहित रामकृष्ण तो जन्म जन्मांतर के सात्विक संस्कार लेकर उत्पन्न हुए थे, जिनके बल पर वे स्वयमेव मां जगदम्बा की साधना में लीन हो गए और अपने असामान्य त्याग वैराग्य और श्रद्धा भक्ति के सहारे तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। इष्ट देवी का दिव्य दर्शन प्राप्त करके वे कृतार्थ भी हुए, किंतु मुमुक्षा की कामना से व्याकुल रामकृष्ण को उससे शांति नहीं मिली। वे तो निर्विकल्प समाधि के लिए पराशक्ति महामाया की पूर्ण उपलब्धि के लिए परब्रह्म की आनंदानुभूति के लिए अधीर थे, व्याकुल थे, पागल हो रहे थे। उस अशांति के प्रशमन के लिए आत्मानुग्रह, स्वकीय त्याग वैराग्य और ध्यान मनन यथेष्ट नहीं था। आवश्यकता थी विधिवत साधना द्वारा साधन पथ के विभिन्न स्तरों को पार करने की। वे महाशक्ति को मां कहकर पुकारते थे, अतः वे शक्ति साधना अथवा तंत्र साधना की प्रक्रियाओं और स्तर क्रम को जानना चाहते थे और उनका अनुष्ठान करने के लिए बेचैन थे। देवी भवतारिणी अपने प्रिय पुत्र की व्याकुलता को समझ रही थी, इसलिए उस दिन दक्षिणेश्वर में भैरवी योगीश्वरी का शुभागमन संभव हुआ था और भैरवी ने शीघ्र ही महासाधक रामकृष्ण की भावी भूमिका को देख लिया। वे रामकृष्ण की ईश्वर प्रेरित मात्र स्वरूपिणी तंत्र गुरु थी। जिस दिन रामकृष्ण से उनकी भेंट हुई उसी दिन सवेरे ही रामकृष्ण ने ध्यानावस्था में उनका रूप देख लिया था। इसका उल्लेख ठाकुर के आदि भक्त अक्षय कुमार सेन ने रामकृष्ण पुथी नामक बंगला पुस्तक में किया है। उन्होंने स्वयं रामकृष्ण से भैरवी का वर्णन सुना था। वे लिखते हैं, प्रभुदेव पुलकित शरीर और गदगद कंठ से उन्हें मां कहकर संबोधित करते थे। वे कहते थे, ये सामान्य स्त्री नहीं है, ये गुणों की भंडार है। बाहर से जैसी रूपवती है वैसी ही भीतर से भी है। श्री हरिचरणों की आश्रिता इन सन्यासिनी ने बहुत साधन भजन किया है। इन्हें देवभाषा संस्कृत का विशेष ज्ञान है और ये शास्त्रों के सुगूढ़ वाक्यों की सरल सुबोध व्याख्या कर देती है। उनकी सम्यक चर्चा करना संभव नहीं। प्रभु तो कहते थे कि वे मूर्तिमान चारों वेद हैं। तंत्र शास्त्र, गीता, पुराण, भक्ति शास्त्र उन्हें अचरस कंठस्थ हैं। वे उन्हें ब्राह्मणी कहते थे, इसलिए सब लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर की एक कोठरी में भैरवी रहने लगी। देवी दर्शन और पूजा ध्यान के बाद वे रामकृष्ण के साथ पंचवटी में चली जाती। वहां दोनों देर देर तक साधना और शास्त्रादि की चर्चा करते रहते। रामकृष्ण उन्हें विस्तार पूर्वक अपनी प्रत्येक आत्मिक अनुभूति का वर्णन सुनाते और अपनी अनेक समस्याओं और संदेहों को उनके सामने निसंकोच भाव से रखते। अनेक लोगों का मत है कि भैरवी योगेश्वरी ने अपने अध्यात्म पुत्र गदाधर भट्टाचार्य का नामकरण किया था रामकृष्ण। रामकृष्ण नाम लेकर उनकी चर्चा नहीं करते थे। जब कभी वे उनका उल्लेख करते, ब्राह्मणी ही कहते। भैरवी भी उत्साहपूर्वक अपनी झोली से गीता, भागवत, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत आदि शास्त्र ग्रंथ निकालती और ठाकुर को समझाती, यह देखो बाबा, तुम्हारे शरीर और मन में जो कुछ हो रहा है वह सब राधा रानी और श्री चैतन्य देव को भी हुआ। यह सब महाभाव है, इसे साधन भजन ही साधारण लोग भला कैसे समझ सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं, कठिन साधना के कारण तुम्हारे माथे में वायु का प्रकोप हो गया है। कोई कहता है यह सब निरा पागलपन है। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मां काली की कृपा तुम्हारे ऊपर ढलक पड़ी है, जिसके कारण तुम बेसंभाल हो रहे हो। मां, तुम तो बिल्कुल नई बात कह रही हो, नया तत्व बतला रही हो, चकित विस्मित बच्चे की तरह रामकृष्ण ने उत्तर दिया। हां बाबा, मैं ठीक कह रही हूं, यह शास्त्रोक्त बात है। मैं पंडितों के सामने शास्त्र ग्रंथ खोलकर तुम्हारी अवस्था का प्रमाण दूंगी। इस तरह अध्यात्म प्रसंग को लेकर दोनों के कितने ही दिन परमानंद में कट गए। एक दिन अचानक रामकृष्ण को होश आया। भैरवी उन्हें विशुद्ध संतान भाव से देखती है और वे स्वयं भैरवी को मां मानते हैं। वात्सल्य रथ से प्रेरित होकर मात्र स्वरूपिनी भैरवी उन्हें साधन पथ पर चलने में सहायता दे रही है। किंतु भैरवी परम सुंदरी है, अवस्था लगभग 40 वर्ष की है, फिर भी अंग प्रत्यंग से यौवन का लावण्य फूटा पड़ता है। इसलिए साधारण लोग दोनों का इतना घनिष्ठ भाव से मिलना जुलना, विशेषकर भैरवी का रात में दक्षिणेश्वर मंदिर में रहना भली नजर से नहीं देखेंगे। मंदिर में कितने प्रकार के दर्शनार्थी रोज आते रहते हैं। मंदिर में पुजारियों, सेवकों, रसोईदारों और दरवानों की संख्या भी तो कुछ कम नहीं। वे लोग भैरवी और ठाकुर के इस निष्कलुष संपर्क को नीच दृष्टि से ही देखेंगे। रामकृष्ण ने भैरवी को बुलाकर अपने मन की ये बातें कही। भैरवी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो बाबा, निंदकों को निंदा करने का अवसर नहीं देना चाहिए, जीवन के व्यवहारिक पथ पर भी नजर रखना जरूरी है। रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर के आसपास की सभी जगहों की पूरी जानकारी थी। उन्होंने कहा, मां, तुम मंडल परिवार के घाट पर जाकर रहो, वह जगह बिल्कुल एकांत है। पास में ही एक छोटा शमशान भी है। पास पड़ोस में अच्छे भक्त लोग हैं, वे सब यत्न पूर्वक तुम्हारी देखभाल करेंगे। सचमुच ही वह स्थान भैरवी के लिए बड़ा उपयुक्त था। वे रामकृष्ण के अध्यात्म जीवन में सहायता के लिए ईश्वरीय प्रेरणा से आई थी। इस कार्य में उन्हें अपने नए वास स्थान में बड़ी सहूलियत थी। वह स्थान दक्षिणेश्वर मंदिर के सटे उत्तर में था, जहां से वे जितनी बार चाहती दक्षिणेश्वर मंदिर के चबूतरे पर आकर रामकृष्ण को देखती, उनको साथ लेकर पंचवटी में जा सकती थी। मंडल चाट पर जाकर भैरवी ने अपना आसन स्थापित किया। घाट के मालिकों ने इन दिव्य दर्शना सन्यासिनी का हार्दिक स्वागत किया। निकट ही एक स्थानीय जमींदार नवीन नियोगी रहते थे। उनकी भक्तिमती स्त्री ने भैरवी मां के रहने और खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर डाला। घाट के एक किनारे एक छोटा सा कमरा था, जिसमें भैरवी मां के लिए एक तख्तपोशी डालकर उनका बिछावन तैयार कर दिया गया। भक्त स्त्रियों ने चावल, दाल, आटा, घी, मैदा आदि खाद्य पदार्थ प्रचुर परिमाण में जुटा दिए। थोड़ी दिनों में ही स्थानीय महिला समाज में सिद्धा साधिका भैरवी मां की प्रसिद्धि फैल गई और सबकी सब महिलाएं उनके दर्शनार्थ आने लगी। भैरवी के मुख से रामकृष्ण की महिमा सुनकर वे सब विस्मित थी। लोक परंपरा के अनुसार उन्होंने सुन रखा था कि काली मंदिर के युवक पुरोहित छोटे भट्टाचार्य का भावटाव कुछ होता है और उस पर काली मां का भार आता है, किंतु अब तो सारे भारत के तीर्थों की परिक्रमा करके आई हुई तेजस्विनी भैरवी अपने मुख से सब सुना रही थी उस ब्राह्मण पुजारी के अपार महात्म्य की बात। वह पुजारी केवल सिद्ध पुरुष ही नहीं है, बल्कि अवतारी पुरुष हैं, जिसके दर्शन मात्र से पुण्य होगा। ग्रामवासिनी महिलाएं भैरवी की बातों से इतनी प्रभावित हुई कि गंगा स्नान करके दल बांधकर वे भैरवी के साथ रामकृष्ण के दर्शनार्थ आने लगी। श्री रामकृष्ण के अभ्युदय की कथा में भैरवी योगेश्वरी द्वारा उनका यह महात्म्य प्रचार विशेष महत्व रखता है, बल्कि उन्होंने महिला भक्तों को जो रामकृष्ण के प्रति आकृष्ट किया, यह भी रामकृष्ण के भक्तों को संगबद्ध करने का प्रारंभिक प्रयास माना जाएगा। भैरवी के द्वारा रामकृष्ण के महिमा विस्तार का प्रभाव दक्षिणेश्वर मंदिर के परिचालकों और दर्शनार्थियों पर भी पड़ा। वे ठाकुर के प्रति विशेष सतर्क और श्रद्धावान हो गए। इससे ठाकुर का भी आत्मविश्वास जागृत हो गया। रानी रासमणि के दामाद मथुरानाथ विश्वास रासमणि की जमींदारी के मैनेजर भी थे और दक्षिणेश्वर काली मंदिर की व्यवस्था भी संभालते थे। ठाकुर रामकृष्ण के साधन जीवन पर सबसे पहले उनकी ही नजर पड़ी और वे उनके श्रेष्ठ भक्त बन गए। मथुर सचमुच बड़े भाग्यवान थे। जिस समय मंदिर के कर्मचारी और दर्शनार्थी रामकृष्ण को पागल पुजारी समझते और उनकी आरतीमती मात्र साधना का वायु रोग समझकर उपहास करते थे, मथुरानाथ उनके महात्म्य को तभी पहचानने लगे थे। वस्तुतः उन्होंने ठाकुर के त्याग वैराग्य की सब तरह से परीक्षा कर ली थी। वर्षों उन्होंने ठाकुर की शुद्ध भक्ति के प्रबल ज्वार को देखा था, उनकी दिव्योन्माद की दशा देखी थी। वे समझ गए थे कि ठाकुर मां जगदम्बा के शुद्ध सत्व भक्ति सिद्ध साधक हैं। इतना ही नहीं, कई बार कठिन सांसारिक समस्याओं के मौकों पर ठाकुर की कृपा से उनकी रक्षा भी हुई थी, इसलिए वे ठाकुर के प्रति आंतरिक स्नेह और श्रद्धाभाव रखते थे। वे जब भी दक्षिणेश्वर आते, कुछ समय बड़े आनंद से ठाकुर के साथ बिताते। नितांत निष्कपट भाव से दोनों एक दूसरे को अपने अपने मन की बताते, आपस में नाना प्रकार की ईश्वरीय चर्चा भी चलाते। कभी कभी मथुर बाबू ठाकुर को रानी रासमणि के जान बाजार स्थित महल में भी ले जाते और वहां बड़ी हार्दिकता से उनका स्वागत सत्कार करते थे। पूरी घटना जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं जल्द ही दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिया है, आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, और अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो मुझे वह भी बताएं। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।